ਮੇਰੀ ਵਾਕਿਆ ਵਾਕਿਆ ਵਾਕਿਆ
प्रत्येक गुरुवार शाम 5:30 पर सुनिए राजस्थान के आकाशवाणी के सभी केंद्रों से एक साथ पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर का प्रायोजित कार्यक्रम धीणेरी बातें।
काकी साहब, छाछ नहीं दो तो कोई बात नहीं, पर आज मुन्ना उतार किया बैठा हो।
काई करूँ दाबू बेटा, भैंस पूरो दूध भी कौन दियो और बिरो जीसोरो भी कौन।
बस इतनी सी बात। आप सुनो आकाशवाणी कार्यक्रम धीणेरी बातें। काकी साहब, ई कार्यक्रम सुनन सु मिलसी पशुपालन सु जुड़ी होरी सबली समस्या नो समाधान।
प्रत्येक गुरुवार शाम 5:30 पर सुनिए राजस्थान के आकाशवाणी के सभी केंद्रों से एक साथ पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर का प्रायोजित कार्यक्रम धीणेरी बातें।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर।
धीणेरी बातें, धीणेरी बातें कार्यक्रम सुनने वाला सगला पशुपालक भाइयों ने हरखू भाई और
रुक्मी काकीरा गणान गणा राम राम।
राम राम रुक्मी काकी।
राम राम हरखू भाई। राम राम हरखू भाई।
हाँ।
थाने तो ठाई वेला के भूख माए लगावण नहीं देखी जे और नींद आवे जने बिछावण नहीं देखी जे।
अरे वात तो है काकी, भूख माए दलियो ही सिरो है जो लागे।
लागे के नहीं लागे? क्योंकि देखो भाई, भूखा बवरजी नहीं गाई जे, भूखा तो दाए पति जे है हरखू भाई।
हाँ खरी खरी काकी, अरे घाले दाड़ में जणी आवे हाडरे माए।
भाई मैं तो आई क्यों हूँ के कुआ में हुई तो खेली रे मायने तो आवेला ही आवेला।
अरे काकी, ए तेज की बातें करो शरीर खुराक नहीं कर रहे हो, पर धीरे री बातें माए ज्ञान री खुराक देवन सारू पधारे अठे पावना।
पण आ तो बताओ कि आज पावना कौन पधारिया है?
अरे आज पावना पधारिया है प्रोफेसर राजेश धूड़िया साहब। आप राजस्थान पशु चिकित्सा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर निदेशक है प्रसार शिक्षा माए, और आज आप बातचीत कर सा मेरी ऋतु माए पशु आहार व्यवस्था किन बात करीजे।
तो सगला पहला यहाँ स्वागत करो और यहाँ राम राम कर ला।
बिल्कुल सा डॉक्टर साहब, आप रो चौपाल में घणो घणो स्वागत है और आपने में करा
राम राम सा।
राम राम सा। राम राम।
डॉक्टर साहब देखो, जी सोरो ओणाली रुत होया करे मेरी रुत, पर देखो जिको रुत जी सोरो करावे नी हरखू भाई वो हाँ। कणे कणे फोड़ा भी दे दे जे आपा लापरवाही राखा नी हाँ। क्योंकि कया करा के उबाण पगा तो कांटा भागेला ही भागेला, तो सावचेतिया नहीं राखा नी तो कहीं न कहीं अफखाया भी आ सके है। और डॉक्टर साहब अपने साथे है तो आपने तो कोई अफखाई आवनी कोनी है नी। हाँ तो डॉक्टर साहब देखो, हरखू भाई बात करी की मेरी रुत रे मायने पशु आहार री व्यवस्था, पर हरखू भाई देखो मैं तो छोटी बात पहला पूछू डॉक्टर साहब ने, क्योंकि सगला ने ध्यान में राखनो पड़े। हाँ। पूरे प्रदेश राज्य को पशुपालक है नी के नवा भी जुड़ रहा है तो नुए लोगा रा सारू देखो सगला पहला डॉक्टर साहब ने आप पूछा कि डॉक्टर साहब पशु आहार कैवे किन्ने?
पशु आहार में सामान्यतः तीन चीजें पशुओं को खिलाई जाती है। सबसे पहले है सूखा चारा, हरा चारा और बांटा, जिसको दाना मिश्रण भी कहते हैं। सूखे चारे में जो हमारी धान की फसलें हैं, दलहन की फसलें हैं, इसमें अनाज और दलहन निकालने के बाद जो अवशिष्ट पदार्थ बचता है, उत्पाद बचता है, उसको पशुओं को हम खिलाने के लिए काम में लेते हैं। जैसे तूड़ी खिला रहे हैं हम, पराली खिलाते हैं, गुणा खिलाते हैं, मूंगफली का छिलका, मूंगफली का गुणा, ये सारी चीजें जो है सूखे चारे के अंतर्गत आती है। हरे चारे में जो है हमें हरे चारा उत्पादन किया जाता है, ज्वार का, बाजरा का, मक्का का, ग्वार का, लोबिया का, इस तरह की हरी चारे की फसलें जो है हमें खरीफ के सीजन में और रबी के सीजन में उगानी पड़ती है, बुआई करनी पड़ती है और उनको पशुओं को खिलाने के काम में लेते हैं। और तीसरी जो पशु आहार में सबसे बड़ी जरूरत है वो है दाना मिश्रण की, जिसे आम भाषा में बांटा भी कहते हैं और कई जगह इसको चाटा भी कहते हैं। तो ये जो चाटा और बाटा जिसकी बात हम कर रहे हैं, ये चार चीजों का मिलकर बना होता है। इसमें सबसे बड़ा है अनाज का दलिया, जो भी है मक्का का है, जौ का है, ज्वार का है, जो भी अनाज पशुपालक के पास अच्छा और घर पर उपलब्ध हो उसको वो काम में ले सकता है। दूसरी इसमें चीज मिलाई जाती है चोकर, चावल की और गेहूं की चोकर जो है इसमें मिलाकर पशु को खिलाते हैं। तीसरी जो प्रोटीन की पूर्ति करने के लिए दालों की चूरी बाजार में उपलब्ध होती है, मूंग की चूरी, चना चूरी, अरहर चूरी, उड़द चूरी, ग्वार कोरमा, राजमा, ग्वार चूरी, जितनी भी दालें हैं उनमें जो चूरी होती है उसको हम पशु आहार में काम में लेते हैं। और चौथी जो है घी के रूप में, वसा के रूप में, फैट के रूप में काम में लेने के लिए हम उपयोग में लेते हैं खल। जो तेलीय बीज है उनकी खलों को हमें काम में लेते हैं। इसमें भी कई तरह की खलें आती है बाजार में जो उपलब्ध है, कपास की खल है, मूंगफली की खल है, सरसों की खल है, तिल्ली की खल है, इन खलों को भी आप जो है काम में पशु आहार में ले सकते हैं। इन चारों चीजों को, अनाज के दलिये को, चोकर को, कपास की खल को और दालों की चूरी को आप बराबर बराबर मात्रा में मिला लें। चारों को जब आप बराबर मात्रा मिला लेते हैं तो आपका एक संतुलित पशु आहार, संतुलित दाना बाटा या संतुलित चाटा तैयार हो जाता है।
हरकू भाई देखो मोटी बात डॉक्टर साहब कितनी चोखी तरीके समझा दी। और आ सवाल देखो मैं पूछ रहा हूं जो नुआ पशुपालक जुड़ रहे है नी, क्योंकि कई बढ़िया गुणिया है नी वारो रुझान उन लागो है पशुपालक में। जदू दिने री बात चालू करिए कागदिया मोकला आवे थाने ठावेला तो नुआ जी को पशुपालक है नी वाने देखो छोटी छोटी बात री जानकारी होनी पहला गणी जरूरी है।
और सगली जानकारी आपने दे दी कि चारों हुए कहीं है, है? अब डॉक्टर साहब देखो आज की वर्षा ऋतु है नी, आ देखो माने तो बहुत ही चोखी लागे पण आई राज का प्रभाव है। देखो मिनखा पर भी तो चोखा भी प्रभाव भी पड़े और कुजा प्रभाव भी पड़िया करे, तो ओ प्रभाव पशुआ पर किया अंगलो पड़े ओ थोड़ा बारे पशुपालक भाई ने समझाओ।
पशुपालक भाइयों अगस्त माह में देश के अधिकांश हिस्सों में मौसम तरबतर होता है। हालांकि इस वर्ष तो मौसम में काफी उतार चढ़ाव देखा गया है। करीब 10 दिन पहले पूरे सप्ताह पूरे प्रदेश में जोरदार बारिश हो रही थी और इस सप्ताह जो है गर्मी अपना रुख ले रही है। यह समय अत्यधिक नमी और अपेक्षाकृत गर्म वातावरण होने के कारण पशु घर के आसपास जमा पानी और पशु घरों के भीतर गीलापन सीधे सीधे रोगाणुओं के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करता है। ऐसे समय में बीमारियां होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। बरसात में मौसम खुश हो जाता है और परंतु यदि बरसात के स्वागत की तैयारियां हम भली प्रकार से नहीं करें तो सारी खुशियां जो है हमारी दूर भी हो सकती है। इसलिए हमें वैज्ञानिक तरीके से पशुधन प्रबंधन करना बहुत जरूरी है। वर्षा ऋतु के दौरान जो है दुधारू पशुओं में विशेषकर गाय और भैंस में रोग तीव्र गति से बढ़ते हैं। वर्षा काल के समय गलघोंटू, लंगड़ा बुखार और परजीवी रोग की संभावना बढ़ जाती है। हल्की बरसात से भेड़ों को किसी प्रकार का विशेष नुकसान नहीं होता है, परंतु हवा के साथ अधिक बरसात होने पर तथा भेड़ों के भीगने पर काफी हानि उठानी पड़ सकती है। इसलिए ऐसे मौसम में भेड़ों को भीगने से बचाने के लिए छप्पर आदि की हमें व्यवस्था करनी। बरसात शुरू होने से 20 से 30 दिन पहले गलघोंटू व लंगड़ा बुखार के टीके गायों भैंसों को लगवा लें। भेड़ों में फिड़किया रोग से बचाव के टीके भी पशुपालकों को लगवा लेने चाहिए और यदि बरसात के पहले नहीं लगवा सके हैं तो बरसात के आरंभ होते ही जितनी जल्दी हो सके ये टीका लगवा लेना चाहिए। यह सुविधा प्रत्येक पशु चिकित्सालय में उपलब्ध है,
मुफ्त में,
बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध है।
और डॉक्टर साहब किसी किसी समस्याएं हो सके पशुओं ने?
अत्यधिक नमी और गर्मी का वातावरण विभिन्न जीवाणुओं, विषाणुओं, कवकों और परजीवियों आदि के पनपने के लिए बहुत अनुकूल होता है। यही कारण है कि गलघोंटू रोग, संक्रामक आंत्रशोध, अतिसार, खाद्य विषाक्तता ऐसी कई समस्याएं हैं जो आमतौर पर जुलाई अगस्त माह में अधिक प्रभावी रूप से देखी जा सकती है। पशु स्वास्थ्य पशुपालन व्यवसाय की रीढ़ की हड्डी है। यदि पशु स्वस्थ होगा तभी उससे अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। और अस्वस्थ पशु को अगर हम कितना ही अच्छा प्रबंधन कर दें, कितना ही अच्छा उसको संतुलित आहार दे दें, उसके बावजूद भी उससे अधिक उत्पादन नहीं लिया जा सकता। ऐसे में हमें पशु को विशेषकर ध्यान देना चाहिए कि उसके टीके लगे हुए हों और परजीवी नाशक दवाएं जो है उनको दी हुई हो। इस मौसम में अंतः परजीवियों के प्रकोप की काफी संभावना होती है जो पशु को अनेक प्रकार से हानि पहुंचाते हैं। इसमें पशु दस्त की बीमारी, गले की सूजन और कमजोरी से ग्रसित हो जाते हैं। पशुओं को इन बीमारियों से बचाने के लिए परजीवी नाशक दवा पिलानी चाहिए और इनको दवा पिलाने से पहले निकट के जो पशु चिकित्सालय है वहाँ पशु चिकित्सक से सलाह अवश्य ले लेनी चाहिए। और जो दवाई आप पिला रहे हैं वो भी दवाई बदल बदल कर पिलानी चाहिए क्योंकि एक ही दवा पिलाने से उसका प्रभाव नहीं रहता है। परजीवी नाशक दवा को आप बरसात के बाद भी पिला सकते हैं। वैसे इसका भी एक नियम है कि साल में दो बार आप परजीवी नाशक दवा को पिला दें, बरसात से पहले और सर्दियों के शुरू होने से पहले।
भाई देखो सावचेती राखानी तो बरखारी रुत भी आनंद देवन वाली हो सके है, नहीं जने पछे देवेला फोड़ा, और पछे वाई वेला के पैसे डोकरी टको सर मुंडाई, क्योंकि सावचेती नहीं राखी नी तो हाथ कमाया कामना किन्ने दीजे।
रुकनेगा की महाराज जितना भी पशुपालक है नी वे हिम्मतदार हो गया है, बखत पर टीको लगावे, साफ सफाई को पूरो पूरो ध्यान रखे।
और मैं कम समझदार हूँ कही
नहीं,
समझदार हूँ पूरी पूरी। तो देखो अब हमारी गोथली हाथ जावे काटो ये
गीतड़ो आपसे सुनो सा गीतड़ो तो सावार आप सुनियो एक फूट रोसो की खड़लो इन बेला आप से सुन रहा हो आकाशवाणी बीकानेर रे ढोलामारू चैनल री प्रस्तुति ढीनेरी बाता। और आज चौपाल में ज्ञानवर्धक जानकर देवन स्वरूप पधारिया है प्रोफेसर राजेश धुड़िया साहब, आप निदेशक है प्रसार शिक्षा में। और आज आप बातचीत करिया वर्षा ऋतु में पशु आहार की व्यवस्था किया करा, इन विषय पर आज आप बातचीत करिया।
और डॉक्टर साहब देखो गीत ले पहला आप बात करी कि वर्षा ऋतु में आप जे सावचेती नहीं रखानी तो पशुओं ने कई तरह की समस्याएं हो सके, बीमारियां हो सके। पण बात करी मेरी रुत्री और पशु आहार तो मेरी रुत्रे माने पशु आहार माथे कहीं प्रभाव पड़े है?
आमतौर पर मानसून जो है 15 जुलाई तक पूरे प्रदेश में प्रभावी हो जाता है। हालांकि मानसून के बाद पशुओं के लिए हरा चारा आसानी से उपलब्ध हो जाता है, परंतु मानसून में देरी कई बार गंभीर समस्याएं पैदा कर देती है। अतः पशुपालकों को मौसम के पूर्व अनुमान के अनुसार जो है सामयिक जो कृषि क्रियाएं हैं उनको अपना लेना चाहिए ताकि हरे चारे की उपलब्धता है जो लगातार बनी रहे। वेटरनरी विश्वविद्यालय के पशुधन अनुसंधान चारा संसाधन प्रबंधन एवं तकनीकी केंद्र द्वारा पशुपालकों के लिए एक त्रैमासिक हिंदी पत्रिका पशु आहार व चारा बुलेटिन का प्रकाशन किया जाता है।
अच्छा।
इस पत्रिका में पशुपालकों को पूरे वर्ष की जाने वाली कृषि सामयिक क्रियाओं की जानकारी दी जाती है ताकि पशुपालक जो है वर्ष भर हरे चारे की उपलब्धता बनाए रखे। वर्षा के आगमन अथवा पहली बरसात के साथ ही फसलों की बुआई के लिए भी जो है पशुपालक भाई जो है खेत को तैयार रखें। खरीफ की फसलें जैसे ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, ग्वार, लोबिया की बुआई भी इस समय प्रारंभ हो जाती है। इन फसलों के लिए 2-3 जुताई करके खेत तैयार रखें और जुलाई के दूसरे और तीसरे सप्ताह तक बीजों की बुआई की जाती है और जो अब तक की जा चुकी है। तो इस प्रकार अगर पशुपालक पूरे साल भर का हिसाब लगाते हुए खेतों को तैयार रखकर बरसात के समय विशेषकर बुआई करके फसलों को उगा लेता है तो वो चारे की निरंतरता को बनाए रख सकता है।
क्यों रुक बे काकी?
भाई मन तो समझ में आई और मने कई मन लागे के चौपाल में बैठो सगला रा लटका देखू नहीं जरा। मने लागे के डॉक्टर साहब री बात सब ने चोखी तरीके समझ में आई है। क्यों
अब डॉक्टर साहब आप बताओ माने की बरखारे रुत माए किन भात्रा चारा पशुओं ने खुआवना चाहिए?
बरसात के समय ये प्राकृतिक घास जो है परती जमीनों में, बाग में, वनों में, खेतों की मेड़ों पर, रेलवे तथा सड़क मार्गों के किनारे पर्याप्त मात्रा में उग जाती है। बरसात के बाद ये घास धीरे धीरे सूख कर पीली पड़ जाती है। तो पशुपालक भाइयों को चाहिए कि इन घासों को परिपक्व होने से पहले यदि काट कर थोड़ा सुखा लें तो पशुओं के लिए काफी उपयोगी सिद्ध हो सकती है, क्योंकि इन घासों में जो है प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में होती है। और हरी घास को अगर हम इस तरह सुखा कर संग्रहित कर लेते हैं तो भविष्य के लिए भी काम में ले सकते हैं और इस विधि को हम सामान्यतः जो है हे बनाना भी कहते हैं।
और डॉक्टर साहब जो अबार आप बात करी के हरो चारो किसो किसो खुआना चाहिए इन्हीं बात देखो चारो जो को खुआवा जो आप बरखा रुत्र माने ध्यान रखा के खावन पीन रो कि कोई भी बासी भोजन नहीं करा या ध्यान रखा कि कोई भी चीज अभी ने गर्म कर खावा तो पशुओं ने हरो चारो खुआती बड़ा किन किन बातों रो ध्यान रखना चाहिए?
बिल्कुल सही है, बरसात में हमें कई सावधानियों का ध्यान में रखना पड़ेगा। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि जो फायदा हम पशु आहार से पशु चारों से लेना चाहते हैं उससे हमें नुकसान नहीं हो। तो इसके लिए सबसे जो पहली जरूरत की चीज है कि हरा चारा जब पशु आहार में मिलाएं तो उसे धीरे धीरे मिलाना चाहिए, अन्यथा पशु की जो पाचन क्रिया है उसके बिगड़ने की संभावना रहती है। यदि दलहनी चारे उपलब्ध ना हो तो कुछ मात्रा में जो है पशु आहार में खली और ऊर्जा युक्त दाना मिश्रण मिलाना चाहिए। दलहनी में धान के चारे को हमेशा बराबर बराबर मात्रा में मिलाकर खिलाना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम जो है एक हफ्ते जो है लगातार उसको धान का चारा खिलाएं फिर हम उसको दलहनी चारे पे ले जाएं। तो ऐसे यकायक परिवर्तन नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे परिवर्तन करना चाहिए। दोनों चारों को अच्छी तरह मिलाकर उसको खिलाना चाहिए। हरे चारे को नियंत्रित मात्रा में ही पशुओं को चराएं और हरे चारे को सूखे चारे या तूड़ी में मिलाकर खिलाएं। यदि धान में दलहनी चारे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो तो पशु आहार में खली मिलाने की आवश्यकता नहीं होती है। बरसात में पशुओं के लिए बाटा बनाने के लिए 2 भाग ज्वार, मक्का, जौ या बाजरा के साथ 1 भाग चोकर मिलाकर 100 किलो उसको बना लें और उस 100 किलो में 2 किलो खनिज लवण व 1 किलो नमक मिलाकर उसको देना चाहिए। बरसात के समय दाना मिश्रण जो हम बनाते हैं उसमें विटामिन ए इत्यादि मिलाने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि हरे चारे जो अभी इस समय उपलब्ध हो रहा है उसमें भरपूर मात्रा में जो है विटामिन ए पाया जाता है। इस प्रकार ये छोटी छोटी सी चीजें हैं कि हरे चारे को हम सूखे चारे के साथ मिला के खिलाएं, यकायक चारे में परिवर्तन न करें और एक ही तरह का चारा जो है उसको ज्यादा मात्रा में पशु को नहीं खिलाएं।
और रुक्मिका की कह रहे कि चौमासो है जो 12 मास नहीं रहे
को नहीं रहे
पर जी हरो चारो घणो उग्यो आप रहे हैं तो भी हरे चारे ने संरक्षित रखने सारू किन बात अपन ने काम कर लेना चाहिए भी कोई विधि विधि भी है कि आप पूछ लांगी डॉक्टर साहब ने
पूछो जरूर डॉक्टर साहब पधारे उड़ाया जाने
बिल्कुल अगर हरा चारा हमारे पास अधिक मात्रा में उपलब्ध है तो हम उसको दो विधियां जो है बहुत प्रचलित विधियां हैं जिनको हम काम में ले सकते हैं जैसे मैंने बताया था कि सड़क के किनारे रेलवे के किनारे खेतों की मेड़ों पर जो घास जो उग रही है इसको परिपक्व होने से पहले अगर हम काट लें और धूप में एक या दो दिन की धूप में उसको सुखा लें ताकि उसमें नमी है वो 15-20% तक जब आ जाए तो उसको हम कई दिनों तक अपने घर में बाड़े में रख सकते हैं भविष्य के लिए काम में ले सकते हैं। तो घासों को जो है हम सुखा कर जिसको हम हे बनाना कहते हैं हे बनाकर संरक्षित कर सकते हैं। और जो धान वाली फसलें हैं ज्वार बाजरा मक्का अगर ये हमारे पास अधिक मात्रा में उपलब्ध है तो इनका साइलेज बनाकर हम इनको सुरक्षित रख सकते हैं। और आजकल साइलेज बनाने के लिए एक बहुत अच्छी विधि जो है प्रचलित हो रही है जिसको हम साइलो बैग विधि कहते हैं कि जो प्लास्टिक या पॉलीप्रिपलिन के बैग आते हैं अलग अलग साइज के बैग उपलब्ध होते हैं 1 क्विंटल से लेकर 1000 क्विंटल तक के बैग हैं। पशुपालक के पास जितनी मात्रा में हरा चारा उपलब्ध है उसके हिसाब से उस बैग का उपयोग कर सकता है। सामान्यतः 5-10 क्विंटल के बैग भी आते हैं। इन बैग को उठाने में आसानी रहती है इनको भरने में आसानी रहती है और पशुओं को जब ये साइलेज इसमें तैयार हो जाता है तो इसको खिलाने में भी आसानी रहती है। तो एक बार इसमें जो है चारा भर के ठूस ठूस कर बिना हवा वाली जगह में जो है भरा जाता है और 40 दिन में ये साइलेज तैयार हो जाता है। तो इस तरह अगर हम साइलेज बनाते हैं और 40 दिन के बाद जो साइलेज तैयार होता है उसको हम 6-8 महीने तक आसानी से काम में ले सकते हैं। वेटनरी विश्वविद्यालय द्वारा जो है इस साइलेज बनाने की विधि के लिए प्रशिक्षण की सुविधा भी जो है कर रखी है। अगर कोई किसान भाई पशुपालक भाई साइलेज बनाने की विधि के बारे में जानना चाहता है तो विश्वविद्यालय के पशुधन चारा संसाधन प्रबंधन में तकनीक केंद्र में जाकर संपर्क भी कर सकता है और उसके जरूरत के हिसाब से उसकी आवश्यकता के अनुसार उसको जो है इस पे प्रशिक्षण भी दिया जा सकता है।
हर को भाई डॉक्टर साहब तो जी सोरो करवा दियो थे कहता कि चौमासो बारू मास को नहीं रहे पर पशुआ रे सारू तो डॉक्टर साहब कहो कि चौमासो बारू मास रह सके है थोड़ी सी मेहनत करे
तो।
और जी सोरो होते देखो रुक्मी काकी रो तो हाथ जाओ प्रो गोथ भी रे मायने क्योंकि डॉक्टर साहब अपनो जी सोरो करवायो जिना भाई यारो जी सोरो कराणो तो मारी जिम्मेदारी बने के नहीं बने तो काट दू गोथली में एक गीतड़ लो
बिल्कुल सा आपसे सुनो सा ओ एक फूटरो सो गीतड़ लो
प्यारा सा प्रोफेसर डॉक्टर कर्नल एके गहलोत, कुलपति राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, सभी किसान भाइयों और बहनों से अनुरोध करता हूं कि पशुधन से समृद्ध राजस्थान को और संपन्न बनाने के लिए प्रत्येक गुरुवार सायं 5:30 बजे से 6 बजे तक राजस्थान के सभी आकाशवाणी केंद्रों से एक साथ प्रसारित आपके इस विश्वविद्यालय का प्रायोजित कार्यक्रम धीणेरी बातें अवश्य सुने एवं लाभ उठाएं। ख्यातनाम पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान के विशेषज्ञों के ज्ञान से धीणेरी बातें मतलब अधिकतम पशुधन उत्पादन, आपकी समृद्धि और राजस्थान की उन्नति।
तो साहबार आप सुनियो एक फूट रसो की टड़लो। इन बेला आप से सुन रहा हो आकाशवाणी बीकानेर रे ढोलामारू चैनल री प्रस्तुति धीनेरी बाता। और आज चौपाल में जानकर देवन सरू पधारिया है प्रोफेसर राजेश धुड़िया साहब, आप निदेशक है प्रसार शिक्षा में। और आज आप बातचीत करिया वर्षा ऋतु में पशु आहार की व्यवस्था किया करा, इन विषय पर आज आप बातचीत करिया।
और डॉक्टर साहब देखो बात करा मेरे रुतरी तो मे अगर घणो उजावे तो एडे रे मायने जिको चराई वाला पशु व्यवहार आपने कहीं ध्यान रखना चाहिए, कई करना चाहिए।
कभी कभी वर्षा कई दिनों तक निरंतर होती रहती है जिससे चरागाहों में पानी भर जाता है। ऐसी अवस्था में चराई करने वाले जैसे पशु हैं, भेड़ है, बकरी है, इनको चराना मुश्किल हो जाता है। तो इनके लिए हमें जो है हमें देखना चाहिए कि हम इनकी व्यवस्था जो है पशु आहार की व्यवस्था जो है उसके बाड़े में ही कर दें। और इस प्रकार की अवस्था से निपटने के लिए यह जरूरी है कि किसान के पास जो भी भूसा, पुआल, गन्ने की खोई, पेड़ों की पत्तियां, मूंगफली के छिलके, खेजड़ी की पत्तियां या सूखी घास जिसको पशु खा सकता है उसको अधिक पौष्टिक बनाकर उसको खिलाए और जब बारिश कम हो जाए तब उसको चरागाह में ले जाए। वर्षा काल में पशुओं को हरा भरा चारा जो है वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहता है, परंतु इसके साथ साथ जो पेट के जो कृमि हैं वो भी इन हरे चारों पर अधिक मात्रा में होते हैं। तो ऐसे समय चराते समय पशुओं को और अगर काट कर हम चारे को ला रहे हैं तो हमें इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ये पेट के कीड़े जो है शरीर में न पहुंचे। और वापस मैं यहां कहना चाहूंगा कि ऐसी स्थिति में जो है पशु को परजीवी नाशक जो है दवा जो है उसको जरूर पिलाए।
और अब डॉक्टर साहब के इन ऋतु माए कई ऐसी विशेष बातें और ध्यान रखना चाहिए जिसको हमारा पशु है वो बीमार नहीं हुए और कोई उत्पादन क्षमता पर प्रभाव नहीं पड़े।
क्योंकि बरसात का मौसम विभिन्न रोगाणुओं के लिए अनुकूल माहौल पैदा करता है, इसलिए इस समय साफ सफाई और स्वच्छता की बहुत ज्यादा जरूरत। पशुपालक भाई को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जो पशु का बाड़ा है या चारा भंडारण की जगह है वहां कहीं पानी तो नहीं आ रहा है, कहीं पानी इकट्ठा तो नहीं हो रहा है, क्योंकि पानी इकट्ठा होगा तो मच्छर मक्खी भी पैदा होंगे और जो आगे बीमारियों का कारण बनेंगे। और अगर चारा भी गीला हो रहा है तो उसमें भी फफूंद लगने की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसे में हम यहाँ ध्यान दें कि पशु घर में जो है पानी इकट्ठा ना हो, मक्खी मच्छर ज्यादा पैदा ना हो। कि इस प्रकार अगर पशुपालक भाई जो है पशु आहार का प्रबंधन करता है तो उसका पशु स्वस्थ रहेगा।
वाह साहब,
भाई देखो आपने साफ सफाई रो पूरो पूरो ध्यान रखना है जिनसु के अपना पशु जी कहे वे रोगी नहीं वे। पर डॉक्टर साहब देखो आप बारा बता तो बहुत सारी बताई है नी, एक बात को नहीं, क्योंकि मेरी रुत में देखो कितनी सारी बातें ध्यान रखा जने पशु आहार सही रहे और अपना पशु जी कहे रोगी को नहीं वे। पर डॉक्टर साहब देखो बात करा पूरे प्रदेश की तो अठे राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर मायने तो आप कहो के प्रशिक्षण दिया करो हो, जानकारियां भी देवो, पर पूरे प्रदेश की बात करा, गांव गांव ढाणी ढाणी रे पशुपालक री बात करा तो वो आ जानकारियां कठू ले सके, खाली भी ने बीकानेरी आनो पड़ेला या प्रदेश में और भी जगह जठे माने जानकारियां मिल जावे।
वेटनरी विश्वविद्यालय द्वारा पशुपालकों के प्रशिक्षण के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, क्योंकि विश्वविद्यालय का उद्देश्य यह है कि पशुपालक को लाभ पहुंचाना। तो बीकानेर मुख्य केंद्र है, यहाँ पर तो प्रशिक्षण की व्यवस्था है ही। इसके अलावा प्रसार शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत 10 जिलों में जो है वेटरनरी विश्वविद्यालय के प्रशिक्षण में अनुसंधान केंद्र कार्य कर रहे हैं। इन केंद्रों पर पशुपालक की आवश्यकता के अनुसार अगर वो AI में ट्रेनिंग लेना चाहता है तो AI के बारे में, पशु आहार की ट्रेनिंग लेना चाहता है तो पशु आहार के लिए, और दूसरा कोई उसका खुद का कोई विषय है, उसकी आवश्यकता है, उसकी जरूरत है, उस हिसाब से प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। और इसके साथ साथ विश्वविद्यालय के उदयपुर केंद्र, वल्लभ नगर में जो है प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है, जयपुर में भी जो है प्रशिक्षण की व्यवस्था है, और बीकानेर में भी जो है पशु चारा संसाधन प्रबंधन तकनीकी केंद्र है, किसानों के लिए एक अलग से प्रशिक्षण केंद्र भी एपेक्स सेंटर में जो है कार्यरत है। तो इन सेंटरों के माध्यम से जो है वेटरनरी विश्वविद्यालय किसानों के लिए, पशुपालकों भाइयों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था कर रहा है।
वाह साहब, देखो रुक्मिका की एक छोटी सी बात है, जो मारे सामने मुंडो खोलने की जरूरत है, मैं तो सीरो खाऊं तो लो बेटा सीरो तैयार, बाज रोटी खाऊं तो लो बाज रोटी तैयार, जी हाँ, मुंडो तो थाने खोलना पड़ी,
वो तो देखो खोलना पड़ी और चाल रावना पड़ी, क्योंकि मारक तो देखो बेवे को नहीं, बेवनो तो अपन नहीं पड़ी।
व्यवस्था सगड़ी राजुआ विकास खाने है।
भाई मोटी तसल्ली आ होगी नी हरकू भाई के खाली बीकानेर नहीं हाँ। और भी जगह व्यवस्थाएं है जठे आपने जिको भी नजदीक केंद्र पड़े बठे जाओ और जिको समस्या है वीरो समाधान बठे आपने मिल जावेला। क्योंकि देखो जिको सुनी जी के तो फायदो हो ही गयो
हाँ।
कोई चूक गयो है हाल और बरखा आवेला हाल भादवेरो महीनो बाकी है सावन पड़ियो है तो एडेरे मायने आप पहली आओ संपर्क कर लो जिनसु के आपरे पशुआ ने कोई तरह रो फोड़ो नहीं पड़े।
बिल्कुल सा सावधानी में समझदारी है
एक समझदारी तो और करनी पड़ी ठिकानो तो बताना ही पड़ी।
तो ठिकानो लिखो सा हाँ लिखो धीनेरी बाता कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बीकानेर। और आज देखो सा चौपाल में इतनी बढ़िया अच्छी जानकारी दे सरू पधारिया है प्रोफेसर राजेश धुड़िया साहब आप राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर प्रसार शिक्षा में निदेशक है। डॉक्टर साहब आप हमारे चौपाल पधारिया इतनी माने अच्छी जानकारी दी इन सरू में आपने करा धन्यवाद और आपने में करा राम राम सा
राम राम सा।
तो सा आती आकाशवाणी बीकानेर ढोला मारू चैनल री प्रस्तुति थी श्री अमित सिंह और श्री मिलिंद पांडेरी सहभागिता थी श्रीमती प्रभा खानवी और राम सहाय हर्षरी।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर।
काकी साहब छाछ नहीं दो तो कोई बात नहीं पर आज मुन्ना उतार किया बैठा हो
काई करूँ दाबू बेटा भैंस पूरा दूध भी कौन दियो और विरोध जीसोरो भी कौन
बस इतनी सी बात। आप सुनो आकाशवाणी सु कार्यक्रम धीरे भी बातिया काकी सा ई कार्यक्रम सुनन सु मिलसी पशुपालन सु जुड़ी होरी सबली समस्या रो समाधान।
प्रत्येक गुरुवार शाम 5:30 पर सुनिए राजस्थान के आकाशवाणी के सभी केंद्रों से एक साथ पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर का प्रायोजित कार्यक्रम धीनेरी बातिया। प्रत्येक गुरुवार शाम 5:30 पर सुनिए राजस्थान के आकाशवाणी के सभी केंद्रों से एक साथ पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर का प्रायोजित कार्यक्रम धीनेरी बातें।